الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظہ لہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے مسلمان جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھیں گے آپ کی کال کی طرف اور پہلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں
میرا نام یوسف ہے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں تو وہ میرا 1000 روپے فنڈ کاٹ رہے ہیں اور جب میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو وہ مجھے 1000 کے بدلے اتنے سال میں کام کروں گا اتنے سال کے بدلے مجھے وہ ڈبل پیسے دیں گے تو یہ کیا سود بنے گا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیکھیے اس طرح کے جو فنڈ ہیں عام طور پر جو کاٹے جاتے ہیں جی پی فنڈ وغیرہ کہلاتے ہیں اور جو رقم آپ کی کاٹی گئی وہ تو آپ کی اپنی ہے جمع ہو رہی ہے ایک نظام کے تحت جمع ہوتی رہتی ہے وہ اور اس کے بعد جب آپ کو واپس ملے گی تو آپ جو بھی ملے گی واپس تو لیں لیکن جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ مت لیجیے گا اس لیے کہ اس طرح کے جو فنڈ ہیں وہ سودی اسکیموں میں لگا دیے جاتے ہیں اور پھر سودی نفع اس صورت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے تو جو آپ کی رقم کٹی ہے وہ آپ وصول کریں اور جو اضافہ ہوا ہے بغیر ثواب کی نیت کے اسے صدقہ کرنا مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا یہ ضروری ہوگا
کمپنی کا اس طریقے سے رقم کاٹنا درست ہوگا
دیکھیے یہ حکومتی قوانین کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ایک باہمی رضامندی کا ماحول بھی ہوتا ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ملازم ایٹ اے ٹائم جب جاب چھوڑتا ہے تو اس کے پاس تھوڑے بہت تو پیسے ہوں کہ وہ اس سے کام چلا سکے 2-4 مہینے گزار سکے تو یوں ایک ریزرو فنڈ ہوتا ہے یہ اس مقصد کے لیے یہ پیسے کاٹے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اسے کسی ایسی اسکیم میں انویسٹ نہیں کیا جاتا کہ جو غیر سودی ہو اگر غیر سودی نظام کو اپنایا جائے تو پھر اگر اضافہ ہوگا تو اس اضافے کو بھی تو ہم منع نہیں کریں گے
کیونکہ وہ فائدہ ہوا تجارت کے حوالے سے ٹھیک ہے کال دیجیے
ماشاء اللہ قبیلہ مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں اور آپ سے رہنمائی لیتے ہی رہتے ہیں مسلسل آپ کے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں رہنمائی لیتے رہتے ہیں بظاہر میں سوچ رہا تھا نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں بظاہر مگر آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو مجھے جہنم سے بھی بچایا مجھے حرام کمائی سے بھی بچایا ہے مجھے میرے بچوں کو میری نسلوں کو آپ نے حرام سے بچایا ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھنے کی برکت سے جو آپ شریعت بیان فرماتے ہیں شرعی احکام بیان فرماتے ہیں اس کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ بھی نہ بولیں دھوکا بھی دیں اور فزیکل ایکٹیویٹی ہو پراپرٹی کا کام ہے میرا تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں آپ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں مجھ پر اور میری نسلوں پر آپ کا احسان ہے اللہ پاک آپ کو جزا خیر عطا فرمائے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اسی طرح آپ پروگرامز کرتے رہیں آپ کے اہل و عیال میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے عرض یہ ہے کہ آج رجحان آج کل بڑھتا جا رہا ہے درزی ہو پلمبر ہو الیکٹریشن ہو یا کلر والا ہو کہیں بھی مکان میں پتا چلتا ہے تو وہ فون کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں مکان ہے یہ کرائے پہ ہے یا یہ سیل پر ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اور مجھے بھی حصہ اس کا دے دینا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے جبکہ آپ کہہ رہے تھے فزیکل ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت بھی فرمائے فزیکل ایکٹیویٹی اور کوئی ایسا حل ارشاد فرمائے کہ ان کی بات ہم مان کر کوئی ڈیل کر بھی دیتے ہیں تو ان کو ہم حصہ بھی دیں اور نہ ان کو گناہ ملے نہ ہم کو گناہ ملے تو اس طرح کی وضاحت فرمائے دیں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے تقریباً زیادہ ہو رہا ہے جزاک اللہ خیرا
جی مفتی صاحب اتنی ساری دعاؤں سے آپ نے نوازا اس کا شکریہ اور اصل جو شکریہ ہے دیکھیے تو میرے لیے سنت کا ہے کہ جنہوں نے یہ احسان کیا ہم پر کہ مدنی چینل لانچ ہوا और ये मदनी चरण जो है वो घर घर तक पहुंचा, लोगों ने देखा। ये प्लेटफॉर्म ना होता तो मैं कहाँ बैठता, कहाँ बात करता। जहाँ आपकी इस प्लेटफॉर्म ने जो है वो नशोनुमा की है, वहाँ मेरी भी नशोनुमा की है, मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है और अब तक सीख ही रहा हूँ। तो जो सूरत आपने बयान की है ऐसा बिलाशुबा हो रहा है, लेकिन जो दुरुस्त तरीका है उस पर अमल करना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो महज फोन ना करे, आपको कहे कि जनाब आपके पास चलकर आ जाए कि भाई एक घर है, जो मकान है और वो अवेलेबल है और आप इस डील में मुझे अपना पार्टनर बना लें। जाहिर बात है एक रियल एस्टेट जो ब्रोकर है नीरज भाई
जी,
वो सिर्फ पता चलने से तो नहीं कमा लेगा ना,
उसे तो एक्टिविटी करनी ही,
पहले पता चलेगा उसे, फिर वो उसको बेचेगा,
कंफर्मेशन करेगा, फिर आगे का प्रोसेस,
फिर वो बेचेगा, इकरार पे चढ़ाएगा, पार्टी ढूंढेगा, उस शख्स से रब्ता करेगा। तो इसका काम महज इतला देना हुआ,
ठीक है,
तो ये इतला देने वाले को अपना उस डील का पार्टनर बना लिया जाए,
ठीक है,
वो चलकर जाए और इस डील का पार्टनर बन जाए और उसे आप 10% दे दें, 20% दे दें, जो भी हिस्सा उसका बनता है उसे दे दें, उसके जिम्मे भी चंद काम लगा दें कि भाई मालिक का पता लगाओ या चाबी लेकर आओ, चाबी देकर आओ, पार्टी आ रही है तुम चले जाओ, जरा विजिट करा दो। तो यूं आपकी इस पार्टनरशिप के अंदर वो कुछ ना कुछ जो है वो काम फिजिकली तौर पर कर सकता है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है।
मुफ्ती, अगर आजकल के दौर में अगर हम देखें, जैसे इन्होंने कहा है तो मतलब सूरत हाल इन्होंने तो एक कंडीशन बयान करी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वक्त चेंज हुआ है, दौर तब्दील हुआ है, राबते के तरीकेकार तब्दील हुए हैं। तो आप फिजिकल यानी एक जो कमीशन एजेंट है या एक ब्रोकर जो है बिल्कुल वो तो मिडिल मैन है ना, वो दो पार्टियों को मिलवा रहा है बेसिकली। अब वो मिलवाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी यूं खत्म हो गई, अब तो बहुत सारे मामलों में पार्टियां भी नहीं मिलती, बिल्कुल आखिर समझ लें जब सौदा हो रहा होता है जब मिलती हैं। तो अगर ये फिजिकल एक्टिविटी वाली जो शर्त है तो इसमें कोई नरमी हो जाए, कोई रियायत हो जाए।
बाज़ुकात मैं अर्ज करता हूँ, बाज़ुकात ये होता है कि हम एक चीज को फेस करने के बजाय उसे मुश्किल समझना शुरू कर देते हैं। कौन सा रियल एस्टेट ब्रोकर है कि जिसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर, फिजिकल एक्टिविटी के बगैर डील हो जाएगी?
बिलाखिर तो होगी फिजिकल एक्टिविटी,
होगी ना
जी,
मतलब वो दिखाने भी लेकर जाएगा,
किसी ना किसी मरहले पे तो आ ही जाएगा,
करेगा वो जो है, डॉक्यूमेंट में भी इन्वॉल्व होगा, वो पेमेंट में भी इन्वॉल्व होगा
जी।
मुमकिन ही नहीं है कि आप सर्विस हासिल कर रहे हैं रियल एस्टेट ब्रोकर की और उसकी फिजिकल कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। वो सूरतें यहाँ पर निकल जाती हैं कि जो बिल्कुल जुगाड़ वाली होती है, जैसे ये जो सवाल हुआ
जी,
महज दलालत थी, इशारा था कि भाई वो एक घर आया हुआ वहां पे, जरा पता कर लेना इसमें क्या ऐसा काम हुआ, वो ऐसा काम नहीं हुआ है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो ना दो ब्रोकरों के दरमियान आपस में डील्स हो रही होती हैं, वहां ऐसा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई सारी डील्स अब ऐसी हो गई हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। शरीयत मुतहरा के जो मकासद हैं वो मकासद ये हैं कि ये जो काम है इस काम को आप पूरे तरीके से अदा कर पाए, ठीक है। आप घर दिखाने नहीं लेकर जाएंगे तो कैसे इसका काम होगा, आप डॉक्यूमेंट की तैयारी नहीं करवाएंगे कैसे काम होगा, आप पेमेंट के हवाले से जो है ना वो मामला नहीं करेंगे कैसे काम होगा,
ठीक।
तो यूं फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं ये होती हैं।
मकसद ये कमीशन या ब्रोकरी जिसको आप कह लें, ये तो एक सवाल आया है, इसके ऊपर अगर मजीद जानना चाहें, मजीद वो करना चाहें तो
देखिए, कमीशन और ब्रोकरी के सवाल तो बढ़ते जा रहे हैं, नई नई शक्लें निकलती जा रही हैं, नए नए अंदाज निकलते जा रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को नो डाउट सवाल करने का तो हक हासिल है, नई सूरतों के मुताबिक सवाल करें। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर, बुनियादी चीज़ों को लेकर माजी में हमने कई मौके पर कमीशन पर प्रोग्राम किए हैं, यूट्यूब पर मौजूद भी हैं, उनको देखा जा सकता है।
ठीक, मुफ्ती अली असगर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी, आप इसको फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह यहाँ से जो मुफ्ती साहब के नई वीडियोस आती हैं, नए सवालात के जवाब आते हैं, या जो प्रोग्राम अहकाम तिजारत है, अहकाम कुरान है, अहकाम हज और दीगर जो मुफ्ती साहब के प्रोग्राम होते हैं, वो इस यूट्यूब चैनल पर जमा कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, तो आप एक ही जगह से मुफ्ती साहब की सारी ये इस टाइप की चीजें वहाँ से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि कुछ लोग रिश्ता करवाने के पैसे चार्ज करते हैं और कई मरतबा फिक्स भी नहीं करते कि कितना दिया जाएगा, तो इस बारे में शरी हुक्म क्या है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
मैरिज ब्यूरो का काम चल रहा है।
देखिए, रिश्ता करवाने वाला भी दो पार्टियों को मिलवाता है, अपनी मेहनत करता है, ऑफिस खोलकर बैठा होता है बाजू का, तो सदियों से ये काम चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। सदियों पुराने जो किताबें हैं उनमें मसाइल लिखे हुए हैं कि रिश्ता करवाने पर जो है ना उज्जत ली जा सकती है, तो इसका भी एक काम है, एक ऐसा काम है कि जो अपनी शरायत पर पूरा उतरता है। ये भी अगर पैसे लेता है तो ये जायज है, लेकिन बात वही आ जाती है कि तय होना जरूरी है। शरीयत मुतारा को कोई भी ऐसी डील पसंद नहीं है जो तनाजे की तरफ ले जाए, जिसका अंजाम जो है तनाजे पर हो। तो तय नहीं होगा तो तनाजा होगा, और तनाजा होना शरीयत को पसंद नहीं है, इसलिए तय होना जरूरी है।
रिश्ता कराएंगे ये सिर्फ पार्टियों को मिलवाना इनकी जिम्मेदारी है, उस रिश्ते को निभवाना भी इनकी जिम्मेदारियों में आएगा नहीं आएगा, कहाँ तक इनका मतलब किरदार हो सकता है?
देखिए, एक शख्स ने मकान की डील करवाई,
ठीक है,
ठीक है, मकान की डील करवाने के बाद वो तो फारिग हो गया, डील पूरी हो चुकी है। अब आगे वो मकान जो है उसका नल का काम नहीं करता, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है, उसके अंदर कोई और चीज का प्रॉब्लम आता है, कब को उसके अंदर अल्लाह ना करे डिकेती हो जाती है या कोई और मसला पैदा हो जाता है, तो उससे उस ब्रोकर का क्या ताल्लुक है? उसका काम है दो पार्टियों को मिलवाकर आमना सामना करवाना और मुतालिका जो काम है उनको अंजाम देना,
ठीक है,
जैसे पेमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये उसका बुनियादी काम है। आगे ये मकान वाले, इनका अंजाम जिसने कैश लिया हो सकता है, उसने जिस काम कारोबार में लगाया वहां नुकसान हो गया, तो क्या ये कहेंगे कि जनाब ये जो रियल एस्टेट ब्रोकर था इसने कैसा मनुसौदा करवाया कि हमें जो आमदनी हासिल हुई उससे नुकसान हो गया? तो आगे तो अपना अपना नसीब होता है। असल चीज ये होती है कि आपके अंदर कुव्वत फैसला है या नहीं, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की सलाहियत है या नहीं, आप जो दिल को लुभाने वाली बातें होती हैं उसमें तो नहीं आ जाते, आप महज लालच को तो नहीं देख रहे, जनाब अमीर फैमिली है, जनाब ये मामला है, तो आपके जिम्मे भी तो कुछ इंक्वायरी बनती है ना। जो मिलवाने वाला है उसकी भी एक ज्ञानत है कि वो उन चीज़ों को बयान करे जो हकायक पर मुश्तमिल है, मुबालगा आराई ना करे, अगर अयूब हैं तो उनको ना छुपाए, इस हद तक तो वो जिम्मेदार है। लेकिन जो फैसला करने वाले लोग हैं उन्हें तो अपने कुव्वत फैसला को इस्तेमाल करना है, उन्हें खुद भी तो एक इंक्वायरी करनी है, तो अगर वो खुद इंक्वायरी नहीं करेंगे और सिर्फ ये देख लेंगे कि जनाब इसने मिलवाया आंख बंद करके रिश्ता कर लो, तो फिर आंख बंद करके फेस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि रिश्ते हों या मकान हो, ये जो जरूरी चीजें हैं उस डील से मुतालिक उसके बाद वो बरी जिम्मे है कमीशन एजेंट से।
भाई मकान को हम ले लेते हैं, एक शख्स आया और देखा उसने कि यहाँ तो जी बहुत सीलन है और यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी उसने जो है वो मकान खरीद लिया,
ठीक है,
इसमें रियल एस्टेट ब्रोकर का क्या कसूर है?
फारिग हो गया ना वो,
फारिग हो।
अब कोई भी अगर खुशी आती है, कोई मतलब ऐसी चीज आती है, तो फिर मिठाई का भी हकदार नहीं होगा, नहीं हो गया।
इस चीज की मिठाई
ये मुझसे मतलब यही मैं सवाल करना चाह रहा था कि एक तो सौदा है ना वो हो गया, उसकी जो कमीशन बनता था वो पेमेंट भी हो गई, लेकिन अब उस हवाले से कोई भी खुशखबरी आएगी, कोई भी अच्छी बात होगी, तो अब इनको जब इत्तला मिलेगी तो मिठाई के लिए तो पहुंचेंगे, ये है मतलब।
अच्छा जी, शादी में होता है?
शादी में भी होता है और दीगर जगहों पे भी हो ही जाता है, कारोबार में अगर कहीं पे कोई कमीशन का इसी सूरत बनती है उसमें अच्छा फायदा हो गया तो ठीक है, अपने तो ब्रोकरी ले चुका हूँ, लेकिन अब क्योंकि फायदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है तो मिठाई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए।
अच्छा, हमने सुना था कि वो जो लोग पहुंचते हैं तालियां बजाते हुए वही पहुंचते हैं।
लो
ठीक है, आप तो नई नई बातें सुना रहे हैं। देखिए ये बंदा फारिग हो गया,
मतलब आपकी बरकत है, प्रोग्राम आकामे तजारत में बैठता हूँ, असल में आपसे लोग सवाल करते होंगे तो आपसे जवाब देकर वो फाइल बंद हो जाती है, मुझसे सवाल करते तो मुझे आपके सामने पेश करना होता।
ठीक है, ठीक है, हम सवाल करने की मन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने रिश्ता करवाया है तो अब वो क्या जरूरी थोड़ी है कि जनाब उसको मिठाई भी पेश की जाएगी।
ठीक,
अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, असल चीज ये है कि दिल का सौदा है, बंदा पेश करना चाहे तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, तोहफा तायब देना, इस मौके पर जो है ना वो सदका खैरात करना, मोमिन का दिल खुश करना है, नेकी है, लेकिन जबर नहीं है।
ठीक,
मतलब कोई उसको आप शर्मिंदगी नहीं दिलवा सकते कि जी मुझे मिठाई नहीं भेजी। एक मुरव्वत मैं तो बोल सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते।
अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज़ पर सब्सिडी दी जाती है, तो क्या ऐसी सब्सिडी हमें इस्तेमाल करना, ऐसी सब्सिडी से फ़ायदा उठाना क्या हमें जायज़ है? जैसे मिसाल के तौर पर हज के मौके पर सब्सिडी मिलती है, इसी तरीके से बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उस पर सब्सिडी मिलती है, तो क्या ऐसी सब्सिडी से अमीर और गरीब का फ़ायदा उठाना क्या जायज़ है?
देखिए, रियासत का जो पैसा है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसको वहां खर्च किया जाए जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब भी पैसा खर्च करने की बात होती है, अल अहम फल अहम का उसूल हमेशा सामने रखना चाहिए। अल अहम फल अहम का मतलब ये होता है कि जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां खर्च किया जाए,
प्रायोरिटी
बुनियाद पर खर्च किया जाए। अब जैसे हज वगैरह पर सब्सिडीज दी जाती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलत काम है। रियासत बहुत सारे कामों में जो है वो सब्सिडी देती है और बहुत सारी चीजों के अंदर सूरत देती है, जैसे आजकल खाद में दे रही है, ठीक है ना। अब खाद को एक हजार, जिसकी 1000 एकड़ जमीन है वो भी उससे फायदा उठा रहा है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो भी उससे फायदा उठा रहा है। एक जनरल सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल पर सब्सिडी मौजूद थी, तो जिसके पास जो है ना वो 8 सिलेंडर गाड़ी है वो भी उससे फायदा उठा रहा था, जिसके पास नहीं है वो भी उससे फायदा उठा रहा था। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ चीजें जनरल सिनेरियो में देखना जरूरी होती है। अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है कोई नहर खुदवाती है, गवर्नमेंट कोई रोड बनवाती है, ठीक है, अमीर भी गुजरेगा गरीब भी गुजरेगा,
बिल्कुल
ये रिफायम्मा के काम हो जाएंगे। लेकिन एक एतराज बिलाल बनता है, वो एतराज ये बनता है कि जी हज पर जाने वाले कुछ वो हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं उन्होंने भी फायदा उठाया, कुछ वो जो गरीब हैं उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन कोई ना कोई तो फार्मूला जहन में होगा देने वालों के, तो अगर आप इस पर एतराज करते हैं तो खाद का क्या बनेगा, इस पर एतराज करते हैं तो गंदम का क्या बनेगा, इस पर एतराज करते हैं तो पेट्रोल का क्या बनेगा, इस पर एतराज करते हैं तो और कई ऐसे शोभा जाते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो यूं बात ऐसी चीजें हैं जिसको हम शरीयत का सवाल कायम करके असल जो है हम सियासत खेलना चाहते हैं, हम जो है ना वो दाव पेच खेलना चाहते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं जनरल नॉलेज के तौर पर पूछना तो अच्छा है, लेकिन अगर मकसद ये है कि जनाब को ये एक जेर हो जाए तो ये जो रविश है ये बेहतर नहीं है।
ठीक, और सब्सिडी लेना देना मतलब लेने के हवाले से बात कर लेना।
आप मुझसे पूछेंगे अगर मैं निजाम बनाता तो मैं कैलकुलेशन करता कि भाई जो हाजी जा रहा है उसका जरिया आमदनी क्या है, ठीक है, और उसकी इनकम क्या है,
स्लैब्स होते हैं,
ठीक है ना, उसको सामने रख के देता।
ठीक,
लेकिन अगर जनरल दी है तो जनरल सब्सिडी देने की मिसालें हमारे सामने मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है।
ठीक,
एक होता है कि इस काम का आइडियल तरीका क्या होना चाहिए था, और एक होता है इस काम का जनरल तौर पर दुरुस्त होना।
ठीक,
तो दोनों में फर्क है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, हज का कौन कौन सा सामान साथ लेकर जाना चाहिए और हज के सामान में रियायत करानी चाहिए खरीदो फरोख्त के वक्त या नहीं, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। हराम सफेद कलर का ही लेकर जाना चाहिए या किसी और कलर का भी ले सकते हैं, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए।
पहला प्रोग्राम हमने 2010 में किया था,
2010
और मेरी 2010 में पहली मर्तबा हाजिरी थी हज पर, पहला हज मैंने 2010 में किया था। तो मैंने ये सोचा कि मैं मुताला कैसे करूं हज का, दो ही तरीके थे, या तो मैं किताब किसी को पढ़ाता या फिर मैं चैनल पे कोई प्रोग्राम कर लेता, तो ये तरीका ज़्यादा मौसर था। प्लान ये किया था कि कोई 40 प्रोग्राम करूँ।
40?
जी हाँ, प्लान किया था ऐसा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 20-22 प्रोग्राम तो हमने किए थे
2010 में। ठीक,
और बड़ी तफसील के साथ रिकॉर्डेड प्रोग्राम था उस वक्त। तो उसके बाद फिर 2012 में शायद लाइव का सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा, जो कि 2021 में हजाज नहीं गए, इसलिए 2021 में नहीं हो सका, और 2022 में होने जा रहा है। जो सवाल इन्होंने किया है सामान की क्या तैयारी करें, तो इसका जवाब तो हम अकाम हज में देंगे, वो ज्यादा बेहतर है। और जो आपने कहा कि सफेद चादर, देखिए जो भी आता है हज करने वो सफेद चादर ही लेकर आता है, सुन्नत यही है। अगर कोई दूसरे कलर की चादर पहनता है तो देखिए एक फितने का दरवाजा खुलेगा, तो यूं बहरहाल उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। और क्या सवाल था इनका?
हज के सामान की खरीदारी करते हुए रियायत लेना, डिस्काउंट करवाना।
देखिए उलमा ने ये लिखा है कि हज के सामान पर दिल खोल कर पैसा खर्च करे बंदा, अगर उसकी इस्तेआत है तो दुकानदार जो कहता है अदा कर दे, क्योंकि अल्लाह की राह में ये सफर है और सामान की खरीदारी से ही जो है इस सफर के मसारिफ शुरू हो जाते हैं। ये जो खर्चा है आप अल्लाह की राह में निकलने के लिए कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है, तो इस तैयारी पर भी वही सवाब है जो अल्लाह की राह में निकलने पर सवाब मिलता है। इस बिना पर उलमा की आदत रही है कि सफर हज के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं और या उस दौरान जो अखराजात होते हैं तो उस पर बारगेनिंग नहीं करते, लेकिन हर एक ने अपनी जेब देखकर इस फैसिलिटी से फायदा उठाना होता है। ये फैसिलिटी है ना, ये
जी
आखिरत में अजर व सवाब बढ़ाने की फैसिलिटी।
ठीक है,
ठीक है ना, ये लाजिम नहीं है। बाज़ औक़ात वहाँ ये होता है कि टैक्सी ड्राइवर
जी
कहता है 400 दिरहम लूंगा मैं, 400 दिरहम, 10 दिरहम का वो फासला होता है
जी,
और वो 400 मांग रहा होता है
और लोग अनजान है,
बिल्कुल अनजान है। ठीक है, वो 200 पे आता है, यानी वो जो एक मशहूर है ना हमारे यहाँ बारगेनिंग,
हजार का बता के 200 का दे दे,
बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात वहां भी ऐसा हो रहा होता है, तो यूं बहुत ज्यादा इस तरह का अगर डिफरेंस कहीं पर मौजूद है तो फिर आपको तरजीह का तो हक हासिल है ना कि भाई मैं टैक्सी में क्यों 400 रुपये लगाऊं, मैं 400 रुपये फला जगह लगाऊंगा।
जी
ठीक है, फला जगह लगाऊंगा, वो भी एक लगाना मौजूद है, तो यूं देखभाल कर भी चलना होगा, इन सब चीजों को देखते हुए चलना जरूरी है।
मुफ्ती, आपने खरीदारों को तो नसीहत कर दी है और बहुत प्यारी नसीहत है, किताबों में लिखी हुई है, आला हज़रत का भी सफ़े हवाला मौजूद है, लेकिन जो दुकानदार है जो चीजें बेच रहा है उसको भी कुछ हाथों हाथी नसीहत कर दे, क्योंकि ये चीज जो है वो उसके दौर में जा रही है।
देखिए दुकानदार पूरी एक मार्केट होती है जिसका ताल्लुक हज से है, एहराम देखिए, ठीक है ना, हमारे मुल्क से इस साल तकरीबन 81,000 लोग जा रहे हैं, तो 81,000 लोग एहराम खरीदेंगे, 81,000 लोगों में से एक बड़ी तादाद हुआ जो बैग खरीदेंगे, एक से ज्यादा जो है बैग खरीदेंगे, फिर यह है कि चप्पलें खरीदेंगे, पर जाने के लिए एक मखसूस चप्पल होती है, मतलब दो पट्टी वाली कैंची वाली जो चप्पल है वो ज्यादातर लोग पहनते हैं और वही पहननी चाहिए क्योंकि पाँव का जो बड़ा हुआ हिस्सा है ये नहीं छुपा सकते, तो कैंची वाली जो चप्पल है वो इस हिस्से को नहीं छुपाती। फिर एक से ज्यादा चप्पल भी लेकर जाना जरूरी है, उसकी वजह ये होती है कि बाद अवकात भूल जाता है बंदा, और इस दफा रमजान में तो एक अजब मामला था, पहले दिन मैं आधा घंटा घूमता रहा कि चप्पल रखने की जगह कहाँ है,
चप्पल ही रखने की जगह नहीं,
चप्पल रखने की जगह ही नहीं, कम से कम मैं कुछ 3 किलोमीटर चलाऊंगा
चप्पल के,
चप्पल कहाँ रखूँ मैं,
अल्लाह
उसके, मैं बैग लेकर नहीं आ था अटकाने वाला, अब तवाफ में चप्पल साथ हूँ ये भी नहीं चाह रहा था, तो बहरहाल मैं मस्जिद के इस तरफ गया, अपोजिट साइड गया, किसी और तरफ गया, मुझे कहीं भी चप्पल रखने की जगह नहीं मिल रही। फिर जगह लोग रख रहे थे क्योंकि जहाँ डब्बे होते हैं वहां से चप्पल उठती नहीं है, वरना सफाई करने वाले उठा देते हैं, बिल आखिर एक जगह रखी और फिर यही हुआ कि उमरा कर कर जब आए तो चप्पल वहां नहीं थी।
तो ये भी तो पॉसिबल है किसी ने रखते हुए देख लिया हो बरकत के लिए,
नहीं वो तो सारी चप्पलें उठा देते फिर।
तो अभी आपने एक बात कही और मेरे जहन में जो है वो एक सवाल था वो रिकॉल हो गया, आपने फरमाया कि बारगेनिंग या कीमत वगैरह के हवाले से पूछूंगा, मैं यहाँ चाहूंगा क्योंकि मदनी चैनल के नाज़रीन में स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे स्टूडेंट जो किसी जामिया में किसी यूनिवर्सिटी में फाइनेंस वगैरह के जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं वो भी हैं और दीगर अफराद भी हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सर्विसेज बेस्ड काम करते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है मुझसे कि उजरत हो या आपके लिए कीमत हो, उसका भाव इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना ज्यादा रेट करके मांगी जाती है, गोया कि वो जो मिसाल दी जाती है कि वो मुर्गी को जबा कर दिया सोने के अंडा देने वाली, तो इतना ज्यादा मांग लिया जाता है। मुझे भी रिसेंटली तजुर्बा हुआ, एक काम कराना था कहीं पर, पर्सनल काम नहीं था, मस्जिद का काम था, तो किसी को बुलाया मैंने, तो जो काम 5,000 में हो सकता था वो सब उन्होंने 40,000 रुपए डिमांड की। चले उनका राइट है, आप यही कहेंगे उनका राइट है डिमांड करना, लेकिन मेरा अगला जुमला फिर यही था कि हजरत आपसे तो हम काम नहीं करा सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर दूसरे से काम करा लिया, ऐसों को आप क्या नसीहत करेंगे और इसके पीछे साइकी क्या होती है?
इसके पीछे साइकी ये होती है कि सामने वाला अनजान है, उसको क्या पता कि आपका तो ये फैमिली बिजनेस है, आपको तो अंदाजा है कि काम कितने का है कितने का नहीं है। तो यूं ये है कि हर आदमी को अंदाजा नहीं होता बाजू का, ये भी एक चीज होती है,
ठीक है।
तो यूं जिसको जैसा तजुर्बा है उसके मुताबिक वो हालात को फेस करता है, तजुर्बा नहीं होता तो बंदा फिर तजुर्बा से सीखता है।
जी सीखता ना, वो अगर महंगी चीज ले आता है तो फिर चार लोग बोल ही रहे होते ना भाई ये इतने की नहीं है, तो वो नसीहत हासिल कर लेता है कि इसके बाद फिर नहीं जाना। तो बहरहाल मैं ये चाह रहा था कि रेट तो भाई मुनासिब कर लो, आप रो रहे हो कि काम नहीं मिल रहा, तो अपने रेट तो मुनासिब कर लो, मार्केट के हिसाब से चलो।
मुतदल रेट रखना बहरहाल इसमें बेहतरी है, उम्मत के लिए भी आसानी है और बरकत का बायस भी बनता है।
बिजनेस स्ट्रेटेजी भी यही है कि आप मार्केट से इतना हटकर एक्स्ट्रा वेजेस रखेंगे, इतना एक्स्ट्रा कीमत रखेंगे, इतनी एक्स्ट्रा जो है आप उजरत मांगेंगे, तो आपकी ऐसी कोई मोनोपोली है नहीं, तो फिर लोग दूसरों की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी
माशाल्लाह, प्रोग्राम अहकाम तिजारत जारी वसारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि दो इस्लामी भाइयों ने पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस चालू किया, यानी एक इस्लामी भाई की दुकान रहेगी और दूसरा इस्लामी भाई उसके अंदर चप्पलों का कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो और जो है कि जो भी मुनाफा होगा उसके अंदर हाफ हाफ यानी आधा आधा दोनों ले लेंगे, तो क्या इस तरह से तिजारत करना दुरुस्त है?
देखिए, इनको ये चाहिए कि जो कैपिटल है वो दोनों मिलाए, बेशक एक कम मिलाता है एक ज्यादा मिलाता है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। ये नहीं कर सकते कि एक कैपिटल मिला रहा है और दूसरा दुकान मिला रहा है, दोनों कैपिटल मिलाए, दुकान किराए पर ले लें और कंपनी जो है दो अफराद ने मिलकर जो काम किया कंपनी बन गई, कंपनी जो है उस दुकान का एक्सपेंस अदा करे, जो उसका मारूफ किराया है वो दुकान के मालिक को दे दिया जाए और दोनों कैपिटल मिला के काम करें। बिलफर्ज जिसके पास दुकान है उसके पास कैपिटल नहीं है, तो जो दूसरा फरीक है ये कुछ ना कुछ कैपिटल के तौर पर उसको कर्जा दे सकता है, तो वो कर्जे से लिए हुए रकम को बतौर कैपिटल शामिल करे और इस तरीके से काम करेगा।
उसमें जो दुकान कही गई कि एक पार्टनर की दुकान है दूसरे का माल है, तो ये पार्टनर दुकान किराए पे दे सकता है? अब
हाँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है,
ठीक है, अपनी ही दुकान वो कंपनी को किराए पे दे देगा जिसका खुद भी हिस्सेदार है।
जी
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
एक अब मेरी साथ वाली दुकान वाला किस्तों पे मोबाइल सेल करता है, एक कस्टमर उधर से किस्तों में लेता है मोबाइल 40,000 में किस्तों में, जब उसकी असल कीमत 25,000 है, तो वो उधर से लेके मेरी दुकान पर आके तो वो मुझे 24,000 का 23,000 का सेल कर जाता है, हलाल है मेरे लिए जायज है?
देखिए, हलाल और जायज तो है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचे, अगर 15,000 के बजाय आप 5,000 का नफा कमा लें इस मौके पर, असल में सामने वाले की मजबूरी है, उसको कैश चाहिए, कैश उसको कहीं से मिलता नहीं है, उसको ये चीज नजर आई कि मैं मोबाइल खरीदूंगा और ये फिर जाके मार्केट में बेच दूंगा तो मुझे यूं कैश मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये मशवरा तो दे दिया लेकिन ये मशवरा शायद मैच नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जिस दुकानदार को ये मोबाइल बेच रहा है
जी,
ये भी तो बेचेगा ना
जी,
और ये नकद बेचता है, तो उस किस्तों वाले ने हो सकता है बेचा ही महंगा हो,
यही तो बता रहे हैं ना कि 25,000 रुपए असल कीमत है उसकी,
ठीक है ना, बेचा ही महंगा हो
जी।
तो जब बेचा ही इतना महंगा है तो ला मुहाला जो मार्केट प्राइस है दुकानदार तो उसी में खरीदेगा, तो ऐसे मौके पर अगर कोई कैश लेना चाहता है तो ये कहलाता है पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस का मॉडल हमारे पास मौजूद है दारुल इफ्ता में, उसके मुताबिक आप डील करें, कम नफा रख के डील करें ताकि सामने वाला जो है उसको पैसे भी मिल जाएं, जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्ट करने वाला भी नफा कमा सके। तरीका तो ये जायज है, शरीयत बार से इस तरीके को गलत नहीं कहेंगे, एक कारोबारी मोड पर तरीका मौजूद है, लेकिन यह है कि आप देखिए 40,000 रुपए पे 15,000 रुपए उसको लॉस हो रहा है,
जी
ये लॉस जाहिर बात है उसकी कमर तोड़ेगा, उसको पैसे वापस करने में मुश्किल पैदा करेगा, और उसके लिए बहरहाल जो टेक्निकली तौर पर अच्छी डील नहीं है।
उस समझे से आपने इसमें शरई हुकुम भी बयान फरमाया और मशवरा भी इरशाद फरमाया, ये भी इरशाद फरमाइए कि ऐसा कर ही क्यों रहा है कोई शख्स कि एक चीज 25,000 रुपए की मार्केट में है और वो कोई नेसेसरी नहीं है, यानी लाइफ के लिए आपकी जिंदगी की ऐसी जरूरियात में उमूमी तौर पर ये शामिल नहीं है कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता।
देखिए वो चीज थोड़ी खरीद रहा है, चीज इस्तेमाल के लिए थोड़ी खरीद रहा है वो,
जी वो तो एक हल वो है कि उसको
तो कैश चाहिए, हो सकता है उसकी माँ अस्पताल में पड़ी हो सकता है उस पर किराया चढ़ गया, किराया उतारने के लिए पैसे ना उसके पास, तो ये 4-6 महीने उसने गेन किए हैं, तो यूं कोई ना कोई तो मजबूरी उसके पीछे होगी काम वाला। जी
ठीक, अगली कॉल थी।
सवाल ये है कि कंपनी आइटम्स पर लिखा होता है कि ये जो चीज है ये इतनी ग्राम है या इतनी लीटर वगैरह है, लेकिन बाज़ोकात जो लिखा होता है उससे कम या ज्यादा होता है, और ये फर्क जो है कम या ज्यादा होने का कभी मामूली सा फर्क होता है और कभी बहुत ज्यादा भी फर्क होता है, तो इस हवाले से कोई अगर मसला हो तो इरशाद फरमा दें।
देखिए मसला ये है कि आमतौर पर जो ब्रांड की चीजें होती हैं वहाँ तो काफी उसमें एहतियात बरती जाती है और जो लिखा है वही होता है, कस्टमर को पता है कि कम है तो वो दूसरा आइटम ले ले, जो बराबर है वो ले ले, और अगर ज्यादा वाली बात है तो कंपनी ने जब पैक करके भेज दिया है छिटाक दो छिटाक पर तो वो जरा नहीं करेगी, तो वो तो उसकी तरफ से मौजूद है कि भाई इतने का आपको हम दे रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी बहुत अगर ज्यादती आती है तो उस पर तो कोई कबात नहीं होगी।
मुझसे जैसे इन्होंने फरमाया और आपने शायद फरमाया कि ब्रांड्स जो हैं वो तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, कंप्यूटराइज मशीनें होती हैं, तो जो उन्होंने अदद फिक्स किया है चाहे वो लीटर में हो चाहे किलोग्राम में,
तो लेजर जो है ना लेजर के जरिए मेजरमेंट हो जाती है। हम गए थे स्लाटर हाउस में, पता ही चला कि जनाब इतने किलो की जो रान होगी वो यहाँ गिरेगी, इतने किलो की यहाँ गिरेगी। एक मरतबा हम अल ऐन में गए थे, अल ऐन में भी जो है एक मुर्गियों का स्लाटर हाउस था, तो हम देखने गए थे कि भाई ज़बीहा दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वहां क्या होता था कि ज़बीहा तो हाथ से हो रहा था,
ठीक है,
ज़बा हाथ से हो रहा था, और उसके बाद फिर वो मुर्गी चैन पर चलती हुई उसके पर उतर गए, उसकी जो ना वो आंतें निकल गई, सब कुछ हो गई। अब आखिरी मरहले पर मुर्गी का वजन कितना है,
ठीक है,
तो ऑटोमेटिक तरीके से लेजर के तरीके से पैमाइश होती थी, और अगर वो 1 किलो की है तो 1 किलो की टोकरी में गिरती थी,
सही,
1.25 किलो की है तो 1.25 किलो की टोकरी में गिरती।
फ्रूट में भी ऐसे हो रहा है,
ठीक है ना, तो यूं मैंने ब्रांड का इसलिए कहा कि उसमें काफी एहतियात बरती जाती है।
जी मुफ्त ब्रांड का तो हो गया, लेकिन बाजू का क्योंकि लोकल मार्केट में भी अगर हम देखें तो अब कम होता जा रहा है कि कस्टमर के सामने तोलना नापना वजन करना ये कदरे कम होता जा रहा है, और रफ्ता रफ्ता शायद ये खत्म ही हो जाए। इस तरीके से जो लोकल हमारी मार्केट है उसमें भी अब पैकेट्स बना के दुकानदार रखने लगे, वो शायद इसलिए कि एकदम रश लगता है तो पैकेट उठा के दे देते हैं। यहाँ पर अगर कोई दुकानदार कोई मैन्युफैक्चरर है कुछ भी है वो अगर जानबूझ के कमी करता है चाहे वो लीटर में हो चाहे किलोग्राम में हो चाहे मीटर्स में हो चाहे किसी और मेजरमेंट के तरीके से हो, अगर वो जानबूझ के कोई एक ग्राफ बनाता है कि जनाब इतना कम दो, मिसाल के तौर पर 1 किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, आप इसको 970 मिलीग्राम पैक करो, कौन पकड़ता है? ये जाते गए जाता गया, कोई कस्टमर भी नहीं आया, क्लेम भी नहीं हुआ, लेकिन इसका ऐसा करना कैसा, और जो इसके पास उसके बदल में इनकम आई उसका क्या हुक्म होगा और आप क्या करें?
देखिए उसके बदले में जो इनकम आई लामहाला ऐसा करना तो हराम है, मतलब पूरा माल बोलकर कम दिया अगर उसने माल, तो ये वही मजम्मत है जिसका कुरान पाक ने बयान किया है, कई जगहों पर बयान किया है कि कम तोलने वालों की यही सजाएं हैं, तो ये कम तोलने ही की सूरत है।
ठीक
ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि आजकल पैकिंग बढ़ती जा रही है, जो ग्राहक का राइट है वो तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, दुकानदार को ये बात अपने जहन में रखना जरूरी है कि अगर ग्राहक कहता है भी मैं तोल कर लूंगा, ये उसका राइट है, आपको ये पूरा करना पड़ेगा, या ग्राहक दुकानदार ले जाता है घर में जाकर तोलता है और वो वापस लेकर आता है, इसका वजन तो कम है, पैकिंग भी नहीं खुली हुई कि भाई इसने निकाल लियो, तो वापस लेना पड़ेगी। वजन की बुनियाद पर जो चीज बेची जाती है उसमें वजन का पूरा होना जरूरी है। अब हमारे यहाँ एक कल्चर बनता जा रहा है जनाब, बड़े बड़े सुपर स्टोर खुलते जा रहे हैं और وہاں لوگ منہ بند کر کے بس ایک الگ ماحول کے اندر گوارا نہیں کرتے پوچھنے کا کتنی ہے کیا ہے کیسے ہے, اٹھائے ٹوکرے میں ڈالے چلے گئے.
جی
تو گاہک کا ایک رائٹ ہے کہ وہ پتا کرے کیا ہے کتنے کی ہے کیسی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہم بعض اوقات پڑھتے نہیں ہیں.
جی
ٹھیک ہے نا, ہم پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. میرا تو کئی دفعہ تجربہ ہوگا کہ جب چیزوں کو پڑھا ہے تو پتا چلا کہ نہیں یہ نہیں لینی چاہیے بلکہ یہ والی لینی چاہیے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی.
پڑھنا چاہیے اور ایکسپائری تو ضرور دیکھ لینی چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دکاندار چاہ نہیں رہا ہوتا, مطلب دکاندار کی انٹینشن نہیں ہوتا کہ میں ایکسپائر چیز بیچ رہا ہوں. رکھے رکھے بعض چیزیں کم چلنے والی ہوتی ہیں, بالخصوص جو کم یوز ہونے والی چیزیں وہ جب آپ لیں اور کسی ایسی دکان سے.
اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹوتھ پیسٹ ہے, ٹوتھ پیسٹ پر لائنیں لگی ہوتی ہیں.
جی
ریڈ لائن لگی ہوتی ہے, گرین لائن لگی ہوتی ہے. ریڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارم فل اشیاء اس میں موجود ہے, ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
ٹھیک
کوئی ہو رہی نہیں کرتا. ایسے ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس میں کوئی بھی نقصان دہ چیز نہیں ہے, وہ ریڈ لائن ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک
ٹھیک ہے نا. تو یوں ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا اپنی صحت کے اعتبار سے, کوانٹیٹی کے اعتبار سے, دیگر چیزوں کے اعتبار سے بہرحال یہ ضروری ہے.
اب یہ لائن جو ہے اگر میں اس کو پیسٹ ٹیوب تصور کروں تو یہ اس کا منہ ہوتا ہے اور اس کی جو بیس ہوتی ہے یہاں پہ اکثر یہ لائن ہوتی ہے. تو دیکھنا
ساری دنیا چاکلیٹ کھا رہی ہوتی ہے, اب تو پھر باہر سے چاکلیٹ آنے میں پابندیاں لگی ہیں, لگے رہے تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے.
ہو سکتا ہے بچے بھی دیکھ رہے ہمارا.
نہیں اس کی وجہ یہ نا کہ پاکستان میں بھی تو بن سکتی ہیں چاکلیٹ.
ٹھیک ہے اپنی پروڈکشن کریں.
مطلب دیکھیں میں نے اس معنی میں کہا ہے کہ جو باہر سے آتی ہیں بہت سارے چیزوں پر لکھا ہوتا ہے اس میں جیلیٹن ہے. اب جیلیٹن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہڈیوں کا گودا ہے. اب وہ جو ہڈیوں کا گودا ہے جناب, وہ ہڈیوں کا گودا اگر وہ یورپ میں جانور کٹا ہے, اگر وہ گائے بھی ہو, اگر وہ اونٹ بھی ہو, بکری بھی ہو, تو کیا ضروری ہے کہ اس کو سلاٹر بائی ہینڈ کیا گیا ہو,
حلال ہی ہو.
ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ گودا کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟
اور جس چیز میں وہ شامل ہوگا پروڈکٹ میں
وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. حالانکہ گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں پچھلے دنوں کہ جناب جو چیز باہر سے آئے گی اردو میں بھی لکھا ہونا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے برانڈس ایسے ہیں کہ جو لکھتے ہیں اردو میں بھی کہ جناب یہ فلاں 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 چیز ہے. تو یوں نہ دیکھنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جیلیٹن نہیں ہے.
ٹھیک.
تو یوں جب آپ دیکھیں گے, توجہ کریں گے تو تبھی آپ ان چیزوں سے بچ پائیں گے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل پراپرٹی ڈیلرز کو اگر کوئی چیز بیچنے کے کہیں کہ ہم 50,000 میں یہ چیز بیچنا چاہتے ہیں, وہ آگے 60,000 میں بیچ کر کمیشن بھی لیتا ہے اور 10,000 اوپر والے بھی لیتا ہے اور دونوں طرف یعنی کمیشن لیتا ہے, کیا ایسا اس کا لینا درست ہے؟ برائے کرم شریع رہنمائی فرما دیجئے.
10,000 اوپر کون سے؟
50,000 کی چیز بیچ دینا میری ہے. ایک مثال دی انہوں نے, کوئی چیز ہے اور وہ اس بروکر کو کہا کہ جی مجھے 50,000 روپے تک کی بیچ دینا ہی. اب اس نے آگے کسٹمر سے طے کر لیا جی 60,000 میں, لیکن اس کو 50,000 ہی دے رہا ہے, وہ ٹاپ رکھنا جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس کا.
یہ تو واضح طور پر حرام ہے اور یہ تو عمل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. حالانکہ لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ روزگار دیا ہے, آپ کو کمیشن مل رہی ہے, بھائی آپ کمیشن لو. نہیں, ریئل اسٹیٹ بروکر سمجھتا ہے میں نے تو جناب چھپڑ پھاڑ کے لینا ہے اور وہ یہ حرام طریقے سے آمدنی حاصل کرنے میں کباہٹ محسوس نہیں کرتا اور حرام کمایا جا رہا ہے, کمایا جا رہا ہے, کمایا جا رہا ہے. سب نہیں کرتے ایسا, لیکن مارکیٹ میں یہ رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اسے آپ نے جواب تو ارشاد فرمایا, یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بہت ساری فیلڈز میں اور بہت سارے مواقع پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ناجائز, حرام, غیر شرعی طریقے سے ایک اچھا اماؤنٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں صرف اس وقت مالی معاملات کی بات کر رہا ہوں. مجھے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کسی کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سوچتا ہے یہ اتنی سی تو بات ہے, چلو کر لو. اب وہ اتنا بڑا فائدہ چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مجھ سے. مطلب اگر میں عوامی بات کروں تو مشکل ہوتا ہے.
یہی تو امتحان ہے. ایک صاحب سے ملا, پوچھا کیا کرتے ہیں, کیا ڈیوٹی ہے, کیا نہیں ہے. کسی محکمے میں تھے وہ, کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ ترقی کا موقع آیا تھا، میں نے کہا میں نے ترقی نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا ترقی کر کے میں سپروائزر بنتا، سپروائزر جب میں بنتا تو پھر میرے ذریعے جو کام ہوتے اس میں دوسروں کو حصہ جاتا. وہاں اس محکمے میں ایسا لازمی ہے، حصہ ضرور جاتا ہے. تو مجھے فورس کیا گیا کہ تم نے جانا ہے آگے، تو کہا کہ جب میرا ٹیسٹ ہوا تو میں نے جان بوجھ کے غلط جوابات دے دیے. بچنے والے تو یوں بھی بچتے ہیں کہ ہم کیوں انوالو ہوں. تو یہ رشوتیں، یہ جناب بڑے بڑے رشوتوں کے بنڈل، نہ جانے کیا کیا وہ ذرائع آمدنی کہ جس کو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے لیکن اگر وہ حرام ہے. اب آپ جوئے کو لے لیں نا، جو جوا کھیلتا ہے وہ سب چیزیں جوئے سے بناتا ہے، حرام ہے. مطلب پاکستان میں تو بہت ہی شاذ و نادر کام ہے شراب کا، اور وہ بھی غیر مسلموں کے نام پہ لائسنس ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں شراب کے اسٹور چلاتے ہیں، شراب بیچ رہے ہوتے ہیں، خنزیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی بہت سارے لوگ حرام اور ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ رب العزت کی توفیق. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں ہے، مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگیں، اس کا لطف مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، تو پھر آپ ان چیزوں سے نکلیں گے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہی دنیا اچھی ہے، تو پھر تو یا آپ اللہ کی رضا کو پالیں یا دنیا کو پالیں، دونوں چیزوں میں سے ایک ہی چیز پا سکتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
احکام تجارت، احکام تجارت.